नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जोशी
और मैं नरेंद्र तिवारी
स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जब चले शहर की ओर में। नरेंद्र, क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है?
क्या अंजलि, तुम भी ना, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल,
यानी कि एक महिला। इसका मतलब है कि देश के कई अहम फैसले उनके द्वारा लिए जाते होंगे।
बिल्कुल सही।
तो जब एक महिला देश के फैसले ले सकती है तो क्या वो घर के फैसले नहीं ले सकती?
अरे भाई, बिल्कुल ले सकती है।
पर ये तो तुम्हारा मानना है ना नरेन, क्या हमारे श्रोता भी यही सोचते हैं?
अब ये तो उनसे पूछने पर ही पता चलेगा। तो जब तक हमारे सामुदायिक संवाददाता लोगों से सवाल पूछते हैं, हम सुनते हैं हमारा साप्ताहिक धारावाहिक शहर की ओर।
मगर उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि कार्यक्रम जब चले शहर की ओर इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों, अगर आप प्रवास के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना चंदर को अखबार में छपे एक विज्ञापन के जरिए मुंबई में एक शिप पर नौकरी के बारे में जानकारी मिलती है। चंदर गजेंद्र से दिल्ली की नौकरी छोड़कर मुंबई चलने के लिए कहता है। उधर गांव में साहूकार चंदर के घर अपने पैसे वापस मांगने आता है। फूलमती साहूकार को पैसे नहीं दे पाती, जिसके कारण साहूकार घर पर बंधी गाय को खोलकर साथ ले जाता है। अब आगे,
अरे हल, अरे चल गैया, सीधी खड़ी हो जा।
हाँ, नहीं तो लोगों को पैसे क्या दे दो, सर पर चढ़ जाते हैं।
चल चल।
सेठ जी, सेठ जी।
कौन है?
लोग दो मिनट चैन भी नहीं लेने देते।
ओ, चंदर की बुआरी, क्या बात है?
सेठ जी, मैं लक्ष्मी को वापस लेने आई हूँ।
मैं लक्ष्मी को वापस लेने आई हूँ? पहले ये बता, मेरी लक्ष्मी कहाँ है? अगर ब्याज की रकम नहीं लाई हो तो गाय यहीं बंधी रहेगी।
लाई हूँ।
लाई हो? अरे बाबू आरी, तू तो सचमुच लक्ष्मी लेकर आई है।
ये लीजिए।
पूरे तो है ना? चंदर को मैंने 9000 रुपए दिए थे।
अभी तो साल का पूरा 18% ब्याज और कुछ असल लौटा रही हूँ।
अच्छा, बड़ा हिसाब लगा कर आई है बुआरी। पर मेरी शर्त थी कि 6 महीने में पैसे सूद समेत लौटा दिए जाएंगे। कोई जिंदगी भर के लिए उधार नहीं दिया है।
ठीक है, बाकी पैसों का भी इंतजाम मैं जल्द ही कर दूंगी। अभी आप मुझे हमारी लक्ष्मी दे दीजिए।
ठीक है ठीक है, अभी तो गाय लौटा रहा हूँ, लेकिन बाकी के पैसे अगर जल्दी ना मिले तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ,
कुछ नहीं कर सकते आप।
क्यों क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि आपने पैसों के बदले मेरे जेवर रखे हुए हैं, जिनकी कीमत आपके दिए हुए पैसों से कहीं ज्यादा है। इसलिए हमारे घर और खेतों की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना।
तू अगर पैसे जल्दी नहीं लाई तो फिर जेवर से हाथ धो बैठना। हाँ,
आजा लक्ष्मी,
ले जा ले जा। वैसे भी सूखी गाय का कोई कितना पैसा दे देता।
पता है लक्ष्मी, तुझे घर पर ना देखकर मैं कितना घबरा गई थी। मेरे रहते तुझे घर से कोई नहीं ले जा सकता, साहूकार भी नहीं।
बौजी, बौजी।
अरे सुषमा, कहाँ भागी आ रही है?
बौजी, मैं तो आपको ही बुलाने जा रही थी, वो चंदर भैजी का फोन आया था।
सच्ची?
हाँ, और अभी 10 मिनट बाद फिर से फोन करेंगे, जल्दी घर चलिए।
अच्छा चल, जल्दी चल।
कविता, सोच रहा हूँ अब ये नौकरी छोड़ दूँ।
क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या?
अरे नहीं, अब जल्दी ही हमारी शादी हो जाएगी और शादी के बाद जरूरतें बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चे बढ़ेंगे तो उसके लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, और ज्यादा पैसे तब मिलेंगे जब मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी।
तो फिर तुम ही क्यों, मुझे भी एक अच्छी नौकरी ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए।
वो क्यों?
क्योंकि जनाब, वो खर्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं होंगे, हमारे होंगे।
वो तो है, वैसे मेरे साथ रहते रहते काफी समझदार हो गई हो तुम।
हाँ, अगर समझदार न होती तो क्या तुमसे प्यार करने की गलती करती?
अच्छा सुनो कविता।
हाँ।
मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी पुराने रीति रिवाजों के साथ तुम्हारे गांव में ही हो।
सच राजेश?
हाँ कविता, अब मेरा अपना परिवार तो है नहीं, गांव में तुम्हारा परिवार होगा तो मुझे भी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होगी।
ओ राजेश, मम्मी पापा ही सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे।
बस कविता, अब तो उन्हीं का इंतजार है।
हाँ, मुझे भी।
सुषमा, 10 मिनट तो कब के बीत गए?
आ जाएगा बौजी, हो सकता है चंदर बैची कोशिश कर रहे हो और फोन मिल नहीं पा रहा हो।
हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा सुषमा, वो कविता की शादी की बात कुछ आगे बढ़ी क्या?
अरे हाँ बौजी, मैं तो बताना ही भूल गई। माँ और पिताजी 26 को बम्बई जा रहे हैं। दीदी की चिट्ठी आई थी, साथ में पैसे और रेल की टिकट भी भेजे हैं। लिखा है कि ट्रेन में आराम से आए और स्टेशन पर लेने भी पहुँच रहे हैं।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सुषमा।
पिताजी तो कह रहे थे कि राजेश जीजाजी के रूप में उन्हें एक और बेटा मिल गया है।
सच में सुषमा, कविता बहुत खुशकिस्मत है जो उसे राजेश जैसा पति मिला है।
अरे लगता है चंदर बैजी का फोन आ गया।
मैं देखती हूँ। हेलो।
हाँ मधु, चंदर बोल रहा हूँ।
हाँ मैं सुन रही हूँ।
कैसी हो तुम? घर पर सब कैसे हैं?
यहाँ सब ठीक है। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है जी।
हाँ वो थोड़ी सर्दी है और सर में दर्द है।
ओह अच्छा, ये बताइए घर कब आ रहे हैं?
घर? मधु तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो जो तुम घर बैठकर पढ़ाई करने की बातें करती थी ना।
हाँ हाँ, इग्नू वाली।
हाँ हाँ वही, मैंने उसके बारे में सारी जानकारी ले ली है और एडमिशन फॉर्म डाक से भेज रहा हूँ।
सच कह रहे हैं आप?
हाँ भाई, अब तुम अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू कर सकती हो। अब तो तुम खुश हो ना?
हाँ मैं बहुत खुश हूँ जी, पर क्या माँ जी इसकी इजाज़त देंगी?
मुझे यकीन है मधु, तुम माँ को भी मना लोगी। अच्छा मेरे पास एक और खुशखबरी है।
एक और खुशखबरी?
हाँ मधु, मैं मुंबई जा रहा हूँ।
क्या? पर आपको तो घर आना था ना, अगर एक बार आप पहले घर आ जाते।
मधु मुंबई सपनों का शहर, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तरक्की कर रहा हूँ।
देखिए यहाँ घर पर आपकी बहुत जरूरत है, अभी मुंबई मत जाइए, कुछ दिनों के लिए घर आ जाइए, फिर बेशक वापस दिल्ली लौट जाइएगा। और वैसे भी एक शहर में अगर पांव जम गए हैं तो फिर से नए शहर में काम ढूंढना।
मधु तुम मेरी बात तो सुनो।
पता है आपको साहूकार पैसों के लिए कितना परेशान कर रहा है? आज अपनी लक्ष्मी को भी खोल कर ले गया था, साथ ही धमकी दे गया है कि अगर जल्द ही पैसे नहीं लौटाए तो घर और खेत दोनों को बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। अभी तो फिलहाल कुछ पैसे देकर शांत करवाया है मामला, पर मुझे लगता है मेरे जेवर तो बिक ही जाएंगे।
मधु इसीलिए तो मैं मुंबई जा रहा हूँ, ताकि घर की खुशहाली वापस ला सकूं। आज शाम की गाड़ी है।
क्या आज ही मुंबई जा रहे हैं?
हाँ, मुंबई में एक अच्छी नौकरी मिली है, 50,000 रुपए महीने तक मिलेंगे।
50,000?
हाँ मधु, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा।
पर मेरी बात तो उस...
मधु मुझे रोकना मत, और फिर मैं अकेले थोड़े ही जा रहा हूँ, कज्जू भी मेरे साथ जा रहा है। जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगा, फिर साहूकार का कर्जा चुकाकर हम गांव में ही कोई अच्छा काम करेंगे।
लेकिन
बस तुम मुझे इस वक्त मत रोको मधु।
अगर आपने मन बना ही लिया है तो फिर मेरे रोकने से क्या होगा, ध्यान से जाइएगा।
तू चिंता मत कर, बस अपना और घर का ख्याल रखना। रखता हूँ
जी।
अरे प्रकाश, ये चंदर और गजेंद्र क्यों नहीं आए अभी तक?
पता नहीं सर, दोनों सुबह कमरे से भी जल्दी चले गए थे।
नमस्ते सर।
नमस्ते भाई, तुम दोनों हो कहाँ आज, और ये कौन सा टाइम है काम पर आने का?
सर वो दरअसल बात ये है कि...
क्या बात है गजेंद्र, कोई परेशानी है क्या?
नहीं सर, बस वो...
सर वो क्या है ना कि हम दोनों मुंबई जा रहे हैं।
मुंबई जा रहे हैं? लेकिन क्यों?
वो सर ये चंदर...
सर वो हम दोनों को वहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल गई है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, बस आज हम यही बताने आए थे कि हम नौकरी छोड़ रहे हैं।
देखो चंदर, मुझे तुम दोनों का काम बहुत पसंद है, अगर पैसे बढ़वाने की बात है तो मैं वादा करता हूँ जैसे ही तुम्हारे 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों के 500 रुपए बढ़ा दूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर फिर तो शायद हमें सोचना...
नहीं गज्जू सर, वो क्या है कि हमारी सारी बातें पहले ही तय हो चुकी हैं और हमें आज ही मुंबई के लिए निकलना है।
मतलब तुम आज ही?
जी सर।
ठीक है, जब तुम दोनों फैसला कर ही चुके हो तो जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि मुंबई जा रहे हो तो वहाँ ध्यान से रहना और सोच समझ कर काम करना। तुम लोगों ने जांच पड़ताल तो कर ली है ना?
सर वो बस अखबार में और फोन पर ही।
जी हाँ सर, सारी जांच पड़ताल हम पहले ही कर चुके हैं।
ठीक है, अगर तुमने सब कुछ सही से पता कर लिया है तो भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन अगर तुम दोनों अपना फैसला बदलो तो तुम्हारे लिए इस रेस्टोरेंट के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं।
सर अगर मुंबई में काम नहीं बना तो हम लौट के दोनों बुद्धू आप ही के पास आएंगे सर। यार चंदर एक बार फिर सोच ले भाई।
सोच लिया गज्जू, अब तो बस आर या फिर पार।
सब चंदर की वजह से हो रहा है, खुद शहर जाकर बस गया और कर्जा हमारी छाती पर छोड़ गया। अब तो उसके कर्मों की सजा बेचारे बेजुबान जानवरों को भी भुगतनी पड़ रही। लक्ष्मी, अरे ये तो लक्ष्मी की आवाज है। अरे मधु, तू लक्ष्मी को साहूकार के यहाँ से कैसे छुड़ा लाई?
माँ जी मैंने साहूकार के कुछ पैसे चुका दिए हैं।
पैसे चुका दिए? लेकिन तेरे पास पैसे आए कहाँ से?
वो मैंने जूस के पैसों में से कुछ पैसे अपने खाते में जमा किए थे।
जमा किए थे? मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि जितने भी पैसे आए सब मेरे हाथ में आने चाहिए।
माँ जी मैंने पैसे बचाए थे इसीलिए तो वो वक्त पर काम आ सके।
एक तू है इधर पैसे बचा रही है और एक वो है शहर जा बैठा है। अरे मैं पूछती हूँ उसे अब कौन से बुरे वक्त का इंतजार है? जब साहूकार एक घर और खेत बेच देगा तब भेजेगा क्या वो पैसे?
माँ जी उनका फोन आया था, अब वो पैसों के इंतजाम के लिए मुंबई जा रहे हैं।
मुंबई जा रहे हैं? अरे वहाँ क्या पैसों के पेड़ लगे हैं जो वहाँ से तोड़कर भेज देगा?
वो कह रहे थे कि उन्हें मुंबई में एक अच्छी नौकरी मिल गई है और पैसे भी काफी अच्छे मिल रहे हैं।
मुझे न तेरी बात पर विश्वास है और न चंदर की। अगली बार फोन आए तो कह देना उससे मेरा एक बेटा और भी है जिसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली है।
माँ जी आप उनसे फोन पर बात कीजिए ना, उन्हें मुंबई जाने से रोकिए, वो आपका कहा बिल्कुल नहीं डालेंगे।
मुंबई जाने से रोकूं? मधु अब चंदर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, तुम लोगों की शादी करवा दी है, अब परिवार की जिम्मेदारी को समझना तुम्हारा काम है।
लेकिन माँ जी आप एक बार कह देंगी तो वो घर भी आ जाएंगे, अभी शायद खाली हाथ घर लौटने में वो संकोच कर रहे हो।
बस बस रहने दे मधु, अगर बम्बई में ही उसकी किस्मत लिखी है तो वो भी आजमा लेने दे उसे।
सुना नरेन तुमने कैसे मधु ने अपने बचाए हुए पैसों का सही वक्त पर सही इस्तेमाल किया?
वैसे अंजलि महिलाओं की बचत आम तौर पर कई घरों में मुश्किल समय में बहुत काम आती है।
इसीलिए तो मैं फिर अपना वही सवाल दोहराऊंगी कि जब महिलाएं इतना कुछ कर सकती हैं तो फिर क्या उन्हें घर के फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए?
अंजलि तुम्हारे इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है हमने अपने अगले सेगमेंट में।
जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो उसमें होना चाहिए, क्योंकि घर तो महिलाएं संभालती हैं और पुरुषों को महिलाओं के कार्य में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और महिलाओं को पुरुषों का कार्य नहीं होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल वही हूँ चेंदो, किले की घर का सारा महिलाओं ही थे करना प्रधान, घर की जिम्मेदारी महिलाओं थे उठान पड़ दी, बच्चों को खर्चा घर को सारा खर्चा जनानियों थे उठान पड़ दो।
बिल्कुल महिलाओं को घरेलू निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, जैसे कुछ घर से शॉपिंग संबंधित चीजें हुई उन्हें अपने आप लेने का अधिकार है, पर कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो मिलजुल के अगर लिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है।
आज के युग में सबसे ज्यादा महत्व महिलाओं का है और महिलाएं अगर न होती तो घर का कुछ भी कार्य असंभव है। महिलाएं सब काम करती हैं और उसको आगे बढ़ाती हैं और सब काम में अपना हाथ बटाती हैं। इतना वो है महिलाओं को कि जो बड़ा काम है उसकी राय अपने आदमी से पूछें, अपने बच्चों से पूछें, मतलब अधिकार सबका है, बच्चों का भी है और आदमी का भी है, लेकिन महिलाएं इसमें ज्यादा महत्व देती हैं।
चन से बोले चमक के जब चनार बोले, खाब चल के तो आँख से टपक के बोले,
दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लोगों की राय जिसे जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
वैसे अंजलि सभी लोग एक जैसे नहीं होते।
मतलब
ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पारिवारिक मामलों में महिलाओं की सलाह को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अहमियत भी देते हैं। और दोस्तों आज एक ऐसी ही महिला से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो घर के मामलों में न सिर्फ अपनी बहू के फैसलों को शामिल करती हैं बल्कि उन्हें तवज्जो भी देती हैं।
आपका परिचय?
जी मेरा नाम शारदा देवी है, मैं लखपत कॉलोनी पार्ट वन में रहती हूँ। हमारे परिवार एक संयुक्त परिवार है। मेरे परिवार में मेरे दो बेटे, एक बेटी और दो भौवे हैं।
आपको क्या लगता है कि बहुओं को घर के मामलों में बोलना चाहिए?
जी हाँ, बहुओं को भी घर के मामलों में बोलने का हक होना चाहिए। अब तो हमारे देश का कानून भी यही कहता है कि महिलाओं को घर के हर मामले में बोलने का पूरा हक है। पहले हम किराए के मकान में रहते थे, जब परिवार में बहुएं आईं और उनके बच्चे हुए तो हमने अपना मकान लेने के लिए सोचा। तब मैंने अपनी बहू से सलाह ली तो मेरी बहू ने कहा, मैं आपके बेटे से कहूंगी कि अपने फंड में से पैसा निकालकर आपको मकान के लिए दे दें। मेरे बेटे ने मुझे पैसे दिए और बहू ने अपने मायके से पैसे लाकर भी हमारी काफ़ी मदद की, जिससे आज हम अपनी छत के नीचे रह रहे हैं। ऐसे ही एक बार जब बहू ने अपने दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में डाले तो उनके एडमिशन में 25,000 का खर्चा बताया, तो मेरे पति ने इसका विरोध किया कि लड़कों को प्राइवेट स्कूल में और लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डालें। इस बात पर बहू अड़ी रही कि मेरे दोनों बच्चे एक समान हैं, मैं दोनों बच्चों को प्राइवेट में ही डालूंगी। इस बात पर काफ़ी दिन तक घर में अशांति रही। तब मैंने अपने पति को समझाया कि यह उनकी अपनी ज़िंदगी है, अब पहले जैसा वक्त नहीं है। तो मेरे पति ने कहा कि जो मेरा बेटा मुझे 3,000 रुपये महीना देता है वह वैसा ही देता रहे तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैंने अपने बेटे से बात कही और मेरा बेटा मान गया।
क्या परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके यानी कि बहुओं के मामलों में बोलने पर कभी उंगली उठाई?
जी, मेरे ससुर जी ने बहू के आगे पढ़ने पर आपत्ति की थी। तब मैंने ससुर जी से कहा कि अब जमाना बदल गया है, अगर वह पढ़ेंगी तो सही और गलत का फर्क समझेंगी और उनकी नज़र में हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। आज बहू को ट्यूशन पढ़ाते देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब जमाना पहले जैसा नहीं है, शर्म आँखों की होती है घूंघट की नहीं।
नरेन, कई लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाएं अगर बाहर काम करती हैं तो वो घर को समय नहीं दे पाती।
लेकिन अंजलि, कुछ काम तो ऐसे होंगे ना जिन्हें महिलाएं घर बैठकर कर सकती हैं।
बिल्कुल हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं।
जैसे
क्या है ना नरेन, मैं बताऊंगी ना तो शायद हमारे सुनने वालों को समझ में ही ना आए। एक काम करते हैं, भैजी को बुलाते हैं।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार अंजलि, कैसे हैं आप दोनों?
भैजी हम बिल्कुल ठीक हैं, बस एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है।
और भैजी हम चाहते हैं कि उसका जवाब आप हमारे श्रोताओं को दें।
पूछिए पूछिए अपना सवाल।
भैजी कुछ ऐसे काम बताइए जिन्हें महिलाएं घर बैठकर कर सकती हूँ।
सवाल तो बड़ा अच्छा है और है भी महिलाओं के हित में, मगर बात शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि काम चाहे घर में करें या घर से बाहर, दोनों के लिए अलग अलग समय तो निकालना पड़ेगा ही। और जरूरी है कि घर के बाकी सदस्य महिला के इस काम को उतना ही महत्व दें जितना कि उसके बाहर जाकर कमाने को।
भैजी ये बात तो आपने बहुत सही कही।
अब रहा तुम्हारा सवाल कि ऐसे कौन से काम हैं, तो भाई बहुत सारे काम घर पर बैठकर किए जा सकते हैं।
जैसे?
जैसे अगर महिलाओं के हाथ में कोई हुनर है, उन्हें दस्तकारी का काम आता है, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो ये सब वो घर पर बैठकर आराम से कर सकती हैं और अच्छे पैसे कमा सकती हैं। जरूरी है मार्केटिंग का कोई साधन ढूंढना और अपने काम के बारे में लोगों को बताना।
लेकिन भैजी अगर किसी को दस्तकारी का काम नहीं आता हो या फिर उसके पास कोई हुनर ही ना हो तो?
ये तो बड़े पते की बात पूछी आपने। ऐसी महिलाओं के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जन शिक्षण संस्थान बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है।
वो कैसे?
वहाँ तरह तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वहाँ महिलाएं सिलाई कढ़ाई बुनाई एम्ब्रॉयडरी इन सब के अलावा अचार पापड़ मुरब्बे और जूस बनाने जैसा काम सीख सकती हैं, जिससे घर में बैठकर अच्छी कमाई हो सकती है।
जी भैजी।
ये इस तरह के काम हैं जिन्हें महिलाएं चाहे तो स्वयं सहायता समूह बनाकर यानी कि SHG बनाकर भी बड़े स्तर पर शुरू कर सकती हैं।
और अगर महिला पढ़ी लिखी हो तो उसके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं?
तो सोने में सुहागा। अरे नरेन, अगर महिला पढ़ी लिखी है तो घर पर ही बैठकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकती हैं, उनका ख्याल रखने का काम कर सकती हैं। इस काम में भी महिलाएं घर और अपने काम दोनों पर ध्यान दे सकती हैं। और अब तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां खुल गई हैं जो लेखन और टेलीमार्केटिंग जैसे काम महिलाओं को घर पर बैठे देते हैं। छोटे शहरों में तो ऐसे काम आसानी से मिल जाते हैं।
तो दोस्तों, भैजी ने अभी बताए कुछ ऐसे काम जिन्हें महिलाएं घर पर रहकर आसानी से कर सकती हैं, और इनमें से किसी को भी चुनकर घर पर रहकर ही आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
किनी सुन दी कह किनी मन जी अपनो लांदी बस कह किनी सुन दी कह किनी मन जी अपनो लांदी बस अज सौ बेर समझ आए तेरी अकल जैसा की तस अल सौ बेर समझ आए तेरी अकल जैसा की तस आहा बिमला बिमला हल करा बिमला बिमला खड़ोनी बिमला बिमला ठेकेदार लिए घस आहा बिमला चली जाई तेरो बस आहा बिमला चली जाई तेरो बस
और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी काम की बात की तरफ।
नरेन क्या तुमने कभी ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया है?
अंजलि करवाया तो है लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर अक्सर मुझे याद आती है रिजर्वेशन काउंटर पर लगी लंबी लाइन।
लेकिन नरेन ये तब की बात थी जब ट्रेनों में ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होता था। अब तो ये सब कुछ बिल्कुल आसान हो चुका है।
जी हाँ दोस्तों, अब आप ट्रेन में अपनी टिकट की बुकिंग और रिजर्वेशन ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के जरिए घर बैठे करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपना पीएनआर नंबर,
ट्रेन का किराया,
कौन सी गाड़ी कौन से स्टेशन से कितने बजे चलेगी
और कितने बजे पहुंचेगी,
रास्ते में गाड़ी किस किस स्टेशन पर रुकेगी,
ये सब आप जान सकते हैं इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर।
वेबसाइट है www.indianrail.gov.in।
इसके अलावा अगर आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए टिकट बुक करवाना चाहते हैं
तो irctc.co.in वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं।
आरक्षण और ट्रेन टिकट बुकिंग की जानकारियों के लिए आप 139 यानी 139 पर भी फोन कर सकते हैं।
इस नंबर पर आपको आपकी जरूरत की सभी जानकारियां मिल जाएंगी। बस आपको फोन पर रिकॉर्डेड आवाज द्वारा बताई जाने वाली बातों को ध्यान से सुनना है और निर्देशों का पालन करना है। और अगर आपको जानकारी मिलने में थोड़ा वक्त लग रहा है तो भी आप थोड़ा धीरज रखें, आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा।
फोन पर ये जानकारियाँ अलग अलग भाषाओं में दी जाती हैं। आप जिस भाषा में जानकारी चाहते हैं उसी भाषा से संबंधित बटन दबा दीजिए, आपको उसी भाषा में जानकारी मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये थी आज की काम की बात। अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
नंबर है 9197176723।
तो दोस्तों अब आ चुका है वो सेगमेंट जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी चिट्ठी की।
शेर राम सिंह जी लिखते हैं कि जब शहर की ओर मैंने कदम बढ़ाए तब मैं सिर्फ 8 साल का था। गांव में परेशान होकर अपने ही गांव के एक आदमी के साथ शहर की तरफ गया। अपने साथ घर से खाने के लिए मंडुआ की कुछ रोटियां ले गया था क्योंकि गेहूं का आटा हमारे गांव में नहीं होता था। सब्जी भी नहीं थी इसलिए नमक पीसकर साथ ले गया था। अपने गांव से पैदल बस पकड़ने के लिए रानी खेत तक गया। तब दिल्ली जाने का किराया हमारे गांव से सिर्फ 32 रुपए था। मेरे पास 40 रुपए थे। किराया देकर जब मेरे पास 8 रुपए बचे तो मेरे गांव के उस आदमी ने जिसके साथ मैं शहर जा रहा था कहा, बेटा अपने पैसे मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। मैंने 5 रुपए दे दिए और 3 रुपए अपने पास रख लिए। इधर उधर देख रहा था तभी मैंने अपने आसपास देखा तो वो आदमी जा चुका था। मैं बच्चा था, रोने लगा। तभी एक आदमी मिला, मैंने उसे सब बताया। वो आदमी मुझे अपने साथ ले गया, 2 दिन तक अपने घर पनाह दी, 3रे दिन एक कोठी में भेज दिया। वहाँ की मेम साहब बहुत बुरा सलूक करती थी। मैं 1 महीना वहाँ रहा। मेम साहब से पैसे मांगे तो उसने कहा कि वो आदमी ले गया जो तुझे यहाँ लाया था। मैं क्या करता, सर्दी के दिन थे, मेरे पास स्वेटर भी ना था। दिल्ली की ठंड से मैं बीमार हो गया। मेम साहब ने मुझे 50 रुपए दिए और कहा, तू जा यहाँ से, अपना इलाज करा। मैंने पैसे पकड़े और एक आदमी के साथ आनंद विहार बस अड्डा आ गया। जब बस में वहाँ से बैठा तो किसी ने जेब काट ली। बस के कंडक्टर ने मुझसे पैसे मांगे, मैं रो पड़ा, उसे सब बताया। उसने एक टिकट दिया और कहा कि किसी से मत कहना। उस कंडक्टर की वजह से मैं अपने गांव लौट आया। फिर मेरी माँ ने मेरा इलाज कराया। मैंने अपने ही गांव में काम सीखा और आज मैं अपने परिवार के साथ गांव में बहुत खुश हूँ।
शेरराम सिंह जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, शेरराम सिंह जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
अपनी चिट्ठियाँ भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com।
जिंदगी एक दौड़ है, दौड़ दौड़ ये दौड़ जीतनी है तुझको, दौड़ दौड़ ये दौड़ जीतनी है तुझको।
अंजलि, क्या तुम्हें हमारे श्रोताओं की चिट्ठियाँ पढ़कर अच्छा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है नरेन।
वैसे एक सेगमेंट मुझे भी बहुत पसंद है और उसे सुनकर मुझे बहुत मजा आता है।
और वो कौन सा सेगमेंट है?
भाई, वो सेगमेंट है आपके संदेश।
तो चलो सुनते हैं कि आज हमारे श्रोताओं ने क्या संदेश भेजे हैं।
मेरा नाम सिमरन राणा है, मैं चंबा की रहने वाली हूँ, ब्लॉक रोड में। और मेरे मामा जी रमेश राणा मुरादाबाद में एसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं उन्हें मैसेज भेजना चाहती हूँ कि आप जब से गए आपने फ़ोन नहीं किया, और आप कैसे, आपकी तबीयत ठीक है? मम्मी यहाँ पर सब ठीक है, नाना नानी सब ठीक है, और परसों नाना जी यहाँ आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन आपने फ़ोन ही नहीं किया, अब फ़ोन कर लेना।
मेरा नाम पूजा भंडारी, मैं ग्राम छोटा छोटा चम्मा में रहने वाली। मैं अपना मामा जी से संदेश देना चाहती हूँ। मेरे मामा जी को देश चंद्र मोलो, मेरा टमरा। मामा जी तुम फोन नहीं करी, मम्मी तुम पर बहुत नाराज है बड़ी, और तुम जब घर आला मेरे खातिर कपड़ा भी ला, और तुम ऐसे प्यार से डॉली भी बोल रहे।
मेरा नाम दीपक पंवार है और मैं चंबा मसूर रोड पर रहता हूँ। और मेरा एक फ्रेंड अखिलेश है जो 12th के बाद ऋषिकेश श्यामपुर चले गए था, वह वहाँ से इंजीनियरिंग कोचिंग कर रहा है। तो मुझे संदेश देना चाहता हूँ कि वो मुझे एक कॉल जरूर कर ले।
मैं अनिता नेगी बनी छू, ग्राम रहना। मैं संदेश देना चाहूँ, माँ जी नमस्ते, हम सब ठीक ठाक छो, तुम ठीक छो, बुल्ला भी ठीक छो, मेरा बच्चा सब ठीक ठाक छी। और माँ जी मैं घर बहुत याद आ मई, मैं बुल्ला भी छू, भी सब ठीक छ। और माँ जी पापा फोन भी नहीं आई, वे के बात आई तो बता दे पापा के वो नहीं बोनी चाहिए, तो मम्मी का फोन के लिए निकाल। माँ घर में सब भाई बहनों से प्यार कर दे, दादा जी नमस्ते बोल दे।
तो दोस्तों, ये थे आज के संदेश। और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं।
नंबर है हमारा 9197176782।
दोस्तों, अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप उस जानकारी को हमारे कार्यक्रम के जरिए बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए। और अगर आप पहले से ही किसी ऐसे प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी हमें चिट्ठियों के जरिए भेज दीजिए।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज़ भणज, और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
और अब वक्त आ गया है दोस्तों आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।